नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना जो हम गाए श्री दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से वो बता रहे हैं। वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वधिम व न चान्यम वृणे हम वरेषादपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तम किमन्यै। इस प्रार्थना में वो भगवान के चरण कमलों पर एक याचना कर रहे हैं कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए इस भौतिक संसार का। इस भौतिक संसार में लोग क्या कुछ नहीं पाने की इच्छा करते रहते। मुझे शांति मिल जाए, मुझे सुख मिले, पैसा, ऐश्वर्य। कुंती महारानी वो कहती हैं कि ये सब कुछ जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, इनके पीछे जो व्यक्ति भागते हैं, कुंती महारानी के अनुसार एदमान मद पुमान, कि ये एक प्रकार का अहंकार है और ये सारी वस्तुएं जो व्यक्ति इच्छा करता है ये उस अहंकार को, उस मद को केवल बढ़ाने वाली है, उसे केवल बढ़ोतरी देने के लिए है। तो यदि कोई व्यक्ति कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुनेगा तो इस भौतिक संसार का एक भौतिकतावादी मनुष्य वो भ्रमित हो जाएगा कि ये कुंती महारानी किस प्रकार की प्रार्थना कर रही है। हम तो जब कोई मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना यही होती है कि भगवान हमें सुख दे दो, भगवान हमें शांति दे दो। एक व्यक्ति, उसने सोचा कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो इसलिए उसने विवाह किया ऐसी स्त्री से जिसका नाम था शांति देवी। तो सोचा यदि विवाह करूंगा शांति देवी से तो घर में शांति आएगी। तो विवाह किया शांति देवी से और जो पहला पुत्र हुआ सोचा इसका भी नाम कुछ उसी प्रकार से रखते हैं, तो पुत्र का नाम रखा प्रशांत। पुत्र का नाम रखा प्रशांत और फिर नया घर लिया तो घर का नाम रखा शांति निकेतन। हालांकि घर बना नहीं था तो लिखा था शांति निकेतन अंडर रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन। तो दोस्त आके पूछता है कि भाई शांति देवी से विवाह किया है, प्रशांत नामक आपका पुत्र है और घर का नाम है शांति निकेतन और घर जो है वो शांति नगर में है, तो अवश्य ही आपको शांति प्राप्त हो गई होगी। तो व्यक्ति कहता है धीरे बोलो, वो सुन लेगी तो पूरा घर ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो इस व्यक्ति, इस जीवन में व्यक्ति ये सब वर चाहता है, सुख शांति। परंतु यहां पर सत्रवत मुनि कहते हैं मुझे इस भौतिक संसार का कोई भी वर नहीं चाहिए, यहां तक कि वरम न मोक्षाम, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो आध्यात्मवादी हैं वो सब इस भौतिक संसार का जो भी वर है उसे चख कर थूक चुके हैं और वो केवल चाहते हैं मुक्ति, मोक्ष चाहते हैं। परंतु भक्त यहां पर कहते हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, और मुझे वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए। तो अरे भाई बाकी क्या रह गया, आप इस भौतिक संसार का कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ वास नहीं चाहिए। वो कहते हैं इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम, कि ये जो आपका वपु है श्री गोपाल जी, जो सामने हम देख रहे हैं माता यशोदा, जो भगवान श्री गोपाल जी इनके वपु को बांध रही है, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम किम अन्यई। ये सदा हर समय मेरे हृदय में इस रूप का वास हो। तो हालांकि हम कार्तिक में हर दिन दामोदर अष्टकम में गा देते हैं और आज भी हम गाए कि हां प्रभु मेरे भी मन में ये बाल रूप ही निवास करे, परंतु जब बाल रूप आते हैं निवास करने के लिए तो मन में जगह नहीं है, बहुत कुछ भरा पड़ा है मन में, तो जब तक उसे खाली नहीं करेंगे, जैसे यहां पर सत्यव्रत मुनि केवल श्री भगवान श्री गोपाल जी का बाल रूप के लिए जगह बनाए हैं, उनका पूरा हृदय केवल उसी से ही भरा हुआ है। एक वृंदावन के कवि ने सुंदर कविता में लिखा है कि हे घनश्याम, मैंने सब कुछ जांच परख कर देख लिया है इस संसार में, और मैंने देखा कि मेरे हृदय में और कोई व्यक्ति नहीं अट सकता। जांच परख कर देख लिया और कोई व्यक्ति इस हृदय में नहीं अट सकता आपके अलावा। तो भाई पूछा गया कि क्यों, ऐसा क्या है इन घनश्याम में, इन गोपाल में, इन गोविंद में, जो कि यही केवल आपके हृदय में अट सकते हैं। तो ये लिखते हैं कि मेरा हृदय बहुत ही टेढ़ा है, सीधे हृदय का नहीं हूं मैं, बहुत ही टेढ़े हृदय का व्यक्ति हूं मैं, और हे घनश्याम आप भी हर समय टेढ़े खड़े रहते हो, तो आपकी जो छवि है वही केवल फिट हो सकती है मेरे हृदय में, आप टेढ़े मेरा हृदय टेढ़ा, तो ये अच्छा प्लग बैठेगा। जैसे कि आप टू पिन प्लग में थ्री पिन नहीं डाल सकते, वैसे वो कहते हैं कि मेरे हृदय में और कोई अवतार नहीं अट सकते, विष्णु जी सीधे खड़े हैं, तो हृदय मेरा टेढ़ा है तो वो फिट नहीं हो सकते उसमें, बाकी सारे अवतार भी फिट नहीं हो सकते, केवल यही त्रिभंग, ये जो आप तीन जगहों पर आपका जो शरीर है वो वक्र है, वही आप अट सकते हैं। और एक कवि वो कहते हैं कि माता यशोदा आपके पीछे भाग रही है, आपने दही का मटका फोड़ दिया है और उसे लुटा रहे हैं, और माता यशोदा आपको पकड़ते हुए भाग रही है, तो आप ढूंढ रहे हैं छिपने की जगह। तो चोर को जब पुलिस पकड़ती है या पकड़ते हुए भागती है, तो चोर ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर कोई देख ना पाए, कोई अंधेरी कोठड़ी। तो ये कवि कहते हैं कि आप अंधेरी जगह ढूंढ रहे हो और सबसे अंधकार वाली जगह एक ही है, मेरा हृदय। मेरे हृदय में इतना अंधकार है कि इससे अंधेरी जगह और आपको मिलेगी नहीं। यदि बंबई में भी अंधेरे में आप जाओ तो मुझसे ज्यादा हृदय, मेरे हृदय से ज्यादा अंधेरी जगह आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए यही एकमात्र जगह है जहां पर आप छिप सकते हैं, माता यशोदा बिल्कुल देख नहीं पाएगी, ढूंढ नहीं पाएगी। तो ये भक्तों का मनोभाव होता है, यहां पर सत्यव्रत मुनि अपने इसी मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण अब अतृप्त हो गए हैं, हमने कथा को कल विराम दिया था, भगवान अतृप्त, जो कि आप्त काम है अतृप्ति दिखा रहे हैं। माता यशोदा वो रसोई घर में गई है पद्मगंधा दूध को संभालने के लिए, भगवान ने कहा अरे मैं क्षीर सागर छोड़ के आया, ये एक दो किलो दूध के पीछे भाग रही है, परंतु माता यशोदा उनकी धारणा थी कि ये भगवान का तदीय है। तदीयानाम समर्चनम तस्मात परतरम देवी, भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा कि भगवान की भी आराधना, भगवान विष्णु की आराधना से परम है भगवान के तदीय की आराधना, भगवान के भक्तों की आराधना। और भगवान इसी के लिए तो श्री वृंदावन धाम में अवतरित हुए। एकमात्र प्रयोजन भगवान का था कि भगवान इस रस का आदान प्रदान इस भौम वृंदावन में कर सकें। और यहां पर वो आए हैं और माता यशोदा घूम रही हैं दूध को संभालते हुए। तो भगवान अब अपना तीसरा ऐश्वर्य इसका परित्याग करते हैं। दूसरा था अतृप्त, पहला था आत्माराम, अब तीसरा ऐश्वर्य है भगवान का। भगवान को कहते हैं त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत का अर्थ है कि भगवान तीनों गुणों के अतीत हैं, इनके परे हैं। त्रिभीर गुणमयैर भावैर एभि सर्वम इदम जगत मोहिताम नाभि जानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। भगवान गीता में कहे हैं कि पूरा संसार जो है वो तीनों गुणों से रचित है। ए भी सर्वम इदम जगत, हर जगह पर ये तीनों जो गुण हैं ये कण कण में बसे हुए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और आजकल कलयुग में तो सत्वगुण जो है उनको छुट्टी दे दी है लोगों ने कि सत्वगुण आपकी आवश्यकता नहीं है, रजोगुण, ये रजोगुण ये सबके ऊपर विराजमान है, सबके टॉप लिस्ट में है रजोगुण और तमोगुण। और रजोगुण ये लक्षण है इस संसार में व्यक्ति जो केवल इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहा है, यही एकमात्र उद्देश्य है कैसे अधिक से अधिक इंद्रिय भोग मिले। और इंद्रिय भोग का साधन है पैसा, कितना मैं पैसा इकट्ठा करूं उतना इंद्रिय भोग इकट्ठा होगा, और जितना इंद्रिय भोग इकट्ठा होगा उतना ये रजोगुण मेरे ऊपर हावी रहेगा। रजोगुण और तमोगुण ये दो भाई हैं, और इन दो भाइयों का संग सभी व्यक्ति मूलतः कर रहे हैं इस कलयुग में। तो भगवान यहां पर गीता में कहते हैं कि मैं अतीत हूं, मैं इनके ऊपर हूं, कि जो मोहित है इस संसार में वो जानता नहीं, मोहिताम ना भी जानाती, कि किस प्रकार से मामेभ्य परम अव्ययम, कि मैं इन तीनों गुणों के परे हूं। तो भाई भगवान ने गीता में सुनाया, और यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि भगवान अपना ये जो ऐश्वर्य है त्रिगुणातीत होने का ऐश्वर्य, इसका भगवान परित्याग कर रहे हैं। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर दधिमंत भाजनम भित्वा मृषासुर दृषदस्मनारहो जघास हयंगम मंतरम गतः। भगवान अब क्रोधित हो रहे हैं। संजात कोप, कोप का अर्थ है क्रोध। भगवान क्रोध अब दिखा रहे हैं, और क्रोध जो है वो रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है। जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है तो क्रोधित होता है। परंतु यहां पर भगवान जो त्रिगुणातीत हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है कोई कि ये त्रिगुणातीत भगवान अब रजोगुण और तमोगुण के अधीन कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वो ऐश्वर्य त्याग दिया। यदि मेरा नाम खराब हो इस संसार में कोई गम नहीं, परंतु मुझे यशोदा चाहिए। और यदि गुस्सा अतृप्ति जो कुछ हो, यदि यशोदा मिलती है वही मैं करूंगा। इसीलिए भगवान को अभिज्ञ स्वराट कहा गया है कि भगवान अपने भी नियम के अंदर नहीं बनते। ऐसा नहीं कि भगवान ने कह दिया तो भगवान सोच रहे अरे मैंने गीता में सुनाया है कि मैं त्रिगुणातीत हूं, अभी गुस्सा कैसे करूं, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे, क्या लोग बोलेंगे। जब जन्माष्टमी की कथा सुनाई जाएगी नासिक में 2007 में, तो उस चर्चा में यदि ये लोग कह दें कि भगवान देखो गुस्सा हुए, तो सभी लोग नासिक वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये भगवान भी गुस्सा होते हैं तो फिर चलो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अब तक रोक रखा था मैंने अपना गुस्सा। तो भगवान परवाह नहीं करते, यदि मेरा नाम खराब हो, परंतु यदि माता यशोदा का प्रेम उस गुस्से से प्राप्त होता है और होगा, और सिद्ध किया उन्होंने कि माता यश वो स्वयं गुस्सा हुए और अपने गुस्से को इस प्रकार से दर्शाया कि माता यशोदा को गुस्सा दिलाया, उनको क्रोध दिलाया, और फिर ये सारी लीला दामोदर लीला, उनको एक नाम मिल गया इससे। तो यहां पर संजात कोप और किस प्रकार का क्रोध, कोई साधारण क्रोध नहीं, संजात कोप, बहुत ज्यादा क्रोधित, सम्यक रूप से क्रोधित भगवान यहां पर प्रतीत हो रहे हैं। अब देखिए, भगवान ने अपनी ऐसी भी लीलाएं की हैं जहां पर भगवान ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं कि कोई और कोई व्यक्ति होता तो पता नहीं वो पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर देता, परंतु भगवान अपने आप को संयमी दिखाए हैं ऐसी लीलाओं में। और एक लीला है कि जब सारे ऋषिगण देवी देवता इकट्ठा हुए एक इष्टागोष्ठी में इकट्ठा हुए और प्रश्न ये पूछ रहे थे कि ये तीनों गुण अवतार में प्रमुख या सर्वोच्च कौन है, ब्रह्मा शिव विष्णु, इन तीनों में सबसे बड़े कौन हैं। तो चर्चा चल रही थी, सभी बता रहे थे कि ब्रह्मा जी के ये सारे गुण हैं, शिव जी के ये हैं, विष्णु के ये सारे गुण हैं। तो उस समय भृगु मुनि वहां पर उपस्थित हुए और इन्होंने कहा चलो भृगु मुनि से पूछा जाए। तो भृगु मुनि इन्होंने कहा कि ठीक है, एक टेस्ट रखते हैं तीनों के लिए, तीनों को परीक्षा में खड़ा करते हैं और देखते हैं कौन उत्तीर्ण होता है परीक्षा में। और परीक्षा क्या थी कि कौन अपने क्रोध को वश में रख सकता है, यह परीक्षा थी। तो भृगु मुनि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपनी अर्धांगिनी शची के साथ बैठे हैं और भृगु मुनि वहां पर जाने से पहले कोई दरवाजा खटखटाया नहीं, कोई बेल नहीं बजाए, कुछ नहीं, सीधा अंदर घुस पड़े। और यहां पर ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये अचानक भृगु, इसको अक्ल नहीं है कि यदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इनके पास आ और पुत्र है मेरा आ रहा है तो खटखट कर या बताकर आए या सेवक को बाहर बताए कि सूचना दे अंदर कि आया हूं मैं, कोई अपॉइंटमेंट ले, कुछ नहीं, ऐसा ही अंदर घुस रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कुछ कहा नहीं, केवल मन में सोचा, केवल मन में सोचा और भृगु मुनि जान गए। उनके मुख को देखकर, मुख के चिन्हों को देखकर जान गए। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो समझ में आ जाता है, चेहरे को देखने से पता लग जाता है कि अंदर कौन सा गुण पनप रहा है। तो भृगु मुनि समझ गए, ब्रह्मा जी कुछ कहे नहीं, आओ आओ भृगु मुनि आओ अंदर आओ, बड़े दिनों बाद आए, क्या क्या काम है। तो उनकी वाणी से सबसे समझ गए। तो भृगु मुनि फिर मार्कशीट में लिखते हैं, नहीं फेल हो गई, तो एफ लिख दिया मार्कशीट में, फेल हो गए, रिपोर्ट कार्ड दे दिया ऋषि मुनियों को जाकर। तो फिर गए अब शिवलोक शिवजी से मिलने के लिए। तो वहां पर, अब वहां पर तो कोई दरवाजा वगैरह तो है नहीं उनके, तो केवल वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो वहां पर भृगु मुनि जब गए तो शिवजी तुरंत अपने भाई को देखते हुए तुरंत दौड़े आलिंगन करने के लिए, पार्वती जी को वहीं पर छोड़ दिया और दौड़कर, अरे इतने समय बाद मेरा भाई आया है, मेरा भाई, मेरा भाई, और भाग भाग कर आलिंगन करने शिवजी भाग रहे हैं। भृगु मुनि, अरे दूर रहो। शिवजी ने कहा, ये क्या, ये कौन सी भाषा? तो भृगु मुनि कहते, दूर रहो ना, धोकर आया करो, इस शरीर पर भस्म लगा रखी है, चारों तरफ केवल स्मशान की भस्म है, और हार पहन रखा है खोपड़ियों का, शिवजी जो हैं उनका हार पहनते हैं, दूर रहो, नहा कराओ, कुछ सेंट वेंट लगा कराओ। तो शिवजी जब ये सुने अब, और भृगु मुनि जानबूझकर कह रहे हैं, उन्हें पता था कि शिवजी जो हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा हायर टेस्ट देना पड़ेगा, उनको उनके लिए जो पेपर सेट करना पड़ेगा वो थोड़ा और कठिन होना चाहिए। ब्रह्मा जी के लिए थोड़ा सरल पेपर टेस्ट किया था, परंतु शिव जी के लिए थोड़ा कठिन। तो ब्रह्मा जी को कुछ मुख से बोला नहीं इन्होंने, केवल अंदर घुस गए और अपनी क्रिया से क्रोध दिला दिया। परंतु यहां पर एक स्टेप ऊपर बोले भी, और ऐसा ऐसे ऐसे वाक्य बोले, दूर रहो, ना कराओ, थोड़ा क्या क्या लगा के रखते हो। शिव जी तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिए, इतनी हिम्मत, ये तुम्हारी जरूरत, और अभी यहां पर बताता हूं कि तुम्हारी भस्म लगाऊंगा अब तो। और वहां पर अब अपना डमरू बजाए और त्रिशूल निकालकर अब तो भृगु मुनि वहां पर से भाग पड़े। अरे भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा, ये स्टूडेंट तो बहुत ही भयानक से लगे, तो भाग। और पार्वती मुनि ने रोक लिया, अरे अरे अरे, तुम्हारे भाई हैं, इस प्रकार से मत व्यवहार करो, नाम खराब हो जाएगा पहले से ही। तो फिर भृगु मुनि जाते हैं और तुरंत मार्कशीट में लिखते हैं, तो पूरा फेल। तो अब बचे विष्णु, तो अब वो सोच रहे थे कि विष्णु के लिए जो पेपर सेट करना है वो सबसे कठिन होना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी वो अच्छे विद्यार्थी हैं, उनकी तैयारी अच्छी है, तो इनके लिए सबसे कठिन पेपर सेट करना चाहिए। तो इनके लिए कौन सी परीक्षा रखी है? गए क्षीर सागर में, जहां पर विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अनंत शेष के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं, लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही है, और विष्णु वहां पर योग निद्रा में, और भृगु भागते हुए जाते हैं और अपने पैर विष्णु जी की छाती पर धम से मारते हैं, उठो, दिन भर सोना सोना सोना। अरे और कोई काम नहीं, पूरी सृष्टि यहां पर कौन चलाएगा, केवल आराम से एक जगह ले ली है इस सर्प के ऊपर और सोए हैं, सोए हैं, उठो। तो यहां पर केवल उन्होंने प्रवेश ही इस प्रकार से नहीं किया, केवल वाक्य भी नहीं कहे, बल्कि शारीरिक रूप से अपने चरणों को विष्णु की छाती पर जोर से मार। और लक्ष्मी देवी तो पूर्ण प्रकार से भ्रमित हो गई, ये सब क्या चल रहा है। और भगवान विष्णु, इनकी प्रतिक्रिया, ये तुरंत उठ खड़े हुए और सबसे पहले इन्होंने भृगु मुनि के चरणों को पकड़कर सहलाने लगे, अरे शायद चोट लग गई होगी। तो भृगु मुनि अब पूछते हैं, अब वो सहम गए, चोट? तो विष्णु कहते हैं, क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है और आप ब्राह्मण हैं, आपकी जो आपका जो अंग है, सारे जो अंग हैं आपके शरीर के, वो बहुत ही मृदु हैं, तो आपके तलवों को चोट लग गई होगी मेरे कठोर छाती को स्पर्श करने मात्र से। तो यहां पर लक्ष्मी देवी पैर दबा रही हैं विष्णु, और विष्णु पैर दबाने लगे भृगु मुनि। तो भृगु मुनि तो फिर बिल्कुल, फिर वो साष्टांग दंडवत किए, फिर क्षमा मांगे, कहे कि नहीं नहीं ये केवल परीक्षा थी, मैंने गलत पेपर सेट किया था और ये उद्देश्य नहीं था मेरा। तो भगवान विष्णु तो सबको जानते थे, परंतु लक्ष्मी देवी वो कहे कि अब तो आपको फेल करना है हमें। तो लक्ष्मी देवी उन्होंने श्राप दे दिया कि ये ब्राह्मण जो हैं, ये ब्राह्मण जाति हर समय गरीब रहेगी, ये ब्राह्मणों को कभी मेरी लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी भी कोई कहानी ब्राह्मण के विषय में शुरू होती है तो क्या कैसे शुरू होती है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण, कभी नहीं आता, एक गांव में बहुत धनी ब्राह्मण था। तो जो भी ब्राह्मण बैठे हैं आज, समझ लीजिए कि लक्ष्मी देवी उन्होंने ये कह दिया था, जो भी कुछ कहना है भृगु मुनि से जाके पूछिए। तो भृगु मुनि उन्होंने फिर पूरा A+ 100% मार्क्स, विष्णु 100% मिल गया इनको। तो इस प्रकार से वो उत्तीर्ण हुए, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, क्रोध उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। परंतु यहां पर देखते हैं कि भगवान संजात कोप। देखिए इस भौतिक संसार में ये जो क्रोध है, ये एक ऐसा दुर्गुण है कि व्यक्ति को ये अधोगति की तरफ ले जाता है। और क्रोध उत्पन्न होता है जब काम संतुष्ट नहीं होता। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, कामः क्रोधोद्भिजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान कहे हैं कि जब कोई व्यक्ति विषय वस्तु के ऊपर अपना ध्यान लगाता है, तो विषय वस्तु पर ध्यान लगाने से काम वासना आसक्ति उस विषय वस्तु के प्रति जागृत होती। और इस भौतिक संसार में बहुत बार ये देखा जाता है कि जो इच्छा होती है वो इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा बहुत लोग करते हैं, काम वासना बहुत लोग अंदर रखे हैं, परंतु बहुत कम लोगों की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो जब काम पूरा नहीं होता तो फिर वो परिवर्तित हो जाता है क्रोध में। जैसे कि कुछ वर्षों पहले मुंबई के अखबारों में यह खबर थी कि एक दंपति अपने परिवार में, दोनों काम करने वाले, पति पत्नी दोनों काम करते, इसलिए देखिए काम बहुत करना पड़ता है, इसलिए काम, काम वासना इनका भी संपर्क है। तो दोनों काम करते और एक शाम पतिदेव घर आते हैं, उसी समय पत्नी भी घर आती हैं। तो पतिदेव कहते हैं चाय लाओ, थक गया मैं बहुत। तो पत्नी अब ये सुनकर कहती है क्या नौकरानी समझ के रखा है। तो अब पतिदेव दोनों का वार्तालाप शुरू होता है, दोनों में झगड़ा शुरू, किस लिए भाई, किस लिए पहले चाय पीनी है, काम दोनों बराबर कर रहे हैं, तनख्वाह दोनों को बराबर मिल रही है, पहले चाय तुम्हें क्यों, जाओ बनाओ मेरे लिए। ये हो गया। तो इस प्रकार से वाद विवाद दोनों में, तो पतिदेव इतने क्रोध में आ गए कि पत्नी को उठा के बालकनी से बाहर पटक दिया। तो अब तो कभी चाय नहीं मिलेगी। पत्नी को उठा के पटक दिया बाहर। तो फिर उस पुलिस केस हुआ, ये वो, और फिर अब जेल में चाय पीनी पड़ी। देखिए क्रोध, एक चाय के प्याले के ऊपर। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा चाय नहीं पीनी चाहिए। ये चाय पीने वालों ने बहुत समस्या उत्पन्न की है। एक और घटना ऐसी थी अखबारों में कि एक व्यक्ति, वो इसी प्रकार से क्रोध अवस्था में अपनी पत्नी को बालकनी से कुछ वाद विवाद चलते चलते बालकनी तक पहुंचे और पत्नी को फेंक दिया नीचे, और फेंकने के पश्चात भागा पुलिस के पास। ये पति पुलिस के पास दौड़ता दौड़ता कहता है, अरे 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 मुझे अंदर कर दो, अरेस्ट करो अंदर तुरंत जल्दी। वो पुलिस कहता है, क्या क्या हो गया, क्या हो गया? वो झगड़ा हो गया पत्नी के साथ और बालकनी से मैंने फेंक दिया, तो अरेस्ट करो मुझे अंदर। तो पत्नी मर गई? नहीं नहीं, इसलिए तो। इसलिए तो अभी अंदर करो, नहीं पता नहीं क्या होगा। तो तात्पर्य यह है कि झगड़ा भी हो तो बालकनी में मत करो। तो क्रोध, एक चंडीगढ़ की एक खबर इस प्रकार से थी कि इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा था, तो वहां पर एक व्यक्ति चंडीगढ़ के, वहां के सरदार जी, वो बैठे और वो क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और इंडिया जीतेगी और इस प्रकार से ये इतने बॉल इतने रन ये वो ये वो, और उसके ऊपर शर्त लगाई थी इतने पैसों की, और इंडिया हार गई। हाँ, होता है कई बार। तो इंडिया हार गई तो इतना क्रोध इन्हें आया कि बगल में इनका बच्चा खेल रहा था, उसे कोई मतलब नहीं टीवी से, इंडिया से, कोई, वो बच्चा बेचारा अपना कोई खिलौने से खेला, पकड़ा वो बच्चे को टीवी के ऊपर देन देनी मारा, जो कुछ मिला उसे पकड़कर टीवी पर मारा, और फिर बाद में समझ में, अरे बाप रे मैंने क्या किया। तो फिर अपने आप का सर दीवार से पटकने लगा और खून खून निकालने लगा पूरा। तो देखिए फिर क्रिकेट से भी क्या हो जाता है। तो ये सबसे दूरी रहे तो अच्छा है, चाय क्रिकेट, इसलिए हरिनाम ही बालकनी। लोग सिनेमा देखने जाते तो बालकनी का टिकट लेते, और हुआ है कई बार बालकनी का टिकट लेते हैं और उनके जो प्रिय हीरो या हीरोइन को यदि उधर पर्दे पर कुछ हो जाए तो बालकनी से अच्छा पासी से कूद सकते हैं नीचे। बहुत लोग कूदे हैं, जैसे कि पाश्चात्य देश में ये एक सुपरमैन नाम की एक पिक्चर निकली थी, तो ये व्यक्ति नाम है सुपरमैन, इसने एक ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, यहां पर उसको कुछ लिखा हुआ है, और वो केवल वो सुपरमैन के वस्त्र धारण करने मात्र से उड़ने लग जाता है। तो हम बता रहे थे कि बच्चों को बता रहे थे कि देखो आप लोग कार्टून देखते हैं या पिक्चरें देखते हैं, सुपरमैन ही मैन, हमारे कौन है, हनुमान। कि वो केवल एक लंगोटी धारण किए हैं, कोई इतना बड़ा वस्त्र भी धारण करने की जरूरत नहीं, और लंका और समुद्र पार कर कर लंका पहुंच गए थे। तो ये जो सुपरमैन, ये सिनेमा देखने के पश्चात वहां पर जो कपड़ों की दुकान, उन वहां पर बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए सुपरमैन की पोशाक बेचने लगे लोग, कि बच्चा अब सुपरमैन की पोशाक पहनकर घर में घूम रहा है सुपरमैन। और देखा गया कि माता पिता लेकर आए, और क्योंकि बच्चे ने सिनेमा में देखा है कि सुपरमैन जब ये पोशाक पहनता है तो उड़ना शुरू करता है, तो बच्चा ये पोशाक पहनकर बालकनी की तरफ जा रहा है और फिर बालकनी से कूद रहा है। बहुत से कूद गए और मर भी गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि सुपरमैन इस पोशाक को पहनकर उड़ सकता है बालकनी से तो मैं क्यों नहीं, मैंने भी तो पहनी है। तो फिर इनके ऊपर केस हो गया। अब देखो, इनके ऊपर केस हो गया कि ये ऐसा वस्त्र क्यों बेचने लगे। तो अब वो जो सुपरमैन का पोशाक ये लोग बेचते हैं उसमें लिखा जाता है, दिस कॉस्ट्यूम डजंट गारंटी यू टू फ्लाई। तो देखिए, लोग इस भौतिक संसार में रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में क्या क्या नहीं करते। विशेष रूप से जब व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होता है, और इसलिए विश्वामित्र मुनि, इनके विषय में कहा गया, विश्वामित्र मुनि वो जो ध्यान में लगे हुए थे, तपस्या में लगे हुए थे, तो विश्वामित्र मुनि सबसे पहले विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग किया मेनका ने। और क्योंकि विश्वामित्र मुनि काम वासना के वशीभूत हुए इसलिए वो अपने पद से च्युत हुए, वो अपनी तपस्या से उनका पतन हुआ काम वासना के कारण। और फिर मेनका के साथ, और फिर उनके साथ विवाह किया और सब तपस्या छोड़ दी, शकुंतला उत्पन्न हुई, और उसके पश्चात फिर एक बार वो बैठकर सोच रहे, मैं क्या था, कैसे क्या हो गया। तो फिर वो सोच रहे हैं और फिर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से तपस्या में लग गए। और अब इन्होंने सोच लिया कि चाहे मेनका आए, चाहे फेनका, चाहे कितने भी कंगन पहनकर आए, चाहे कोई भी आवाज करे, क्योंकि वो उसके जो नूपुर थे, कंगन थे, उसकी आवाज के वजह से ही तो सब कुछ बवाल खड़ा हुआ था। तो अब चाहे कोई कुछ भी पहनकर आए, बिल्कुल ये काम वासना के वशीभूत नहीं होना ठान लिया। तो फिर से जब तपस्या में बैठे तो इंद्रदेव ने फिर से अब सोचा कि दूसरा सैंपल भेजते हैं। तो दूसरा सैंपल, उनका नाम क्या था, रंभा। तो पहले मेनका, अब रंभा। तो अब रंभा आती है, तो अब विश्वामित्र मुनि तैयार थे, तो जैसे ही रंभा को देखते हैं तो अब इतनी हिम्मत, फिर से एक और कोई आ रहा है, तो अब उसे अपने क्रोध की अग्नि से उसे पत्थर बना देते हैं। तो फिर से पतन हो गया, पहले काम वासना के वशीभूत, अब क्रोध के वशीभूत। अरे रे रे रे, अब सोचना, अरे ये मैं भूल गया कि ये भी एक अनर्थ है क्रोध। इसीलिए 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, क्षुत्र त्रिकाल गुण मारुत जय हसिष्ण्याम अस्मान अपार जलधिन अतितीर्य केचित क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदेगो मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथोत्सृजन्ति। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि बड़े बड़े योगी तपस्वी ये अपने बाकी सारे अनर्थों को वश में कर लेते हैं, ये सारे अनर्थों की तुलना एक सागर से की गई है, आसमान अपार जलधिन, एक विशाल जलाशय से की गई है, समुद्र से की गई है ये सारे अनर्थों को। तो ये बड़े बड़े तपस्वी इनको आसानी से पार कर लेते हैं, परंतु इतने बड़े अनर्थों के समुद्र को पार करने के पश्चात ये कई बार एक क्रोध के छोटे से गड्ढे में, जो कीचड़ होता है, उसमें डूब जाते हैं। इतने विशाल समुद्र को पार कर लिया बाकी अनर्थों का, परंतु क्रोध को वश में ये लोग नहीं कर पाए, इसीलिए ये उसमें डूब जाते हैं। जैसे कहते हैं चुल्लू भर पानी में, तो मानो समुद्र को पार कर दिया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी उसमें डूब गए, तो वो कटोरी का थोड़ा सा पानी उसकी तुलना क्रोध से की गई कि बाकी अनर्थों को पार कर दिया परंतु क्रोध को वश में नहीं कर पाए, तो उस चुल्लू भर पानी के क्रोध में डूब गए ये लोग। परंतु यहां पर भगवान क्रोधित हो रहे हैं तो साक्षात क्रोध वो अपने आप को धन्य मान रहा, धन्य हूं मैं कि आज स्फुरिता अरुणाधरम, कि आज मुझे जगह मिली है भगवान श्री श्याम सुंदर के अधरों पर, क्योंकि भगवान संजात कोप स्फुरिता अरुणाधरम, क्रोध अवस्था में भगवान क्या कर रहे थे, अपने अधरों को अपने दांतों से दबा रहे थे। देखा जाता है जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो ये मुद्रा होती है, इस प्रकार से अपने दांतों को दबाता है और क्रोध में कई बार मुट्ठी दबा लेता है, कुछ कर ना पाए तो ये सब कुछ करना शुरू करता है। तो क्रोध में भगवान अपने लाल लाल होठों को बिंब की तरह, भगवान के होठ लाल, बिंब एक फल होता है, उस लाल फल के समान भगवान के लाल होठ, और भगवान के जो दांत बहुत ही उजले, ऐसा नहीं कि भगवान कोई उजला टूथपेस्ट रोज लगाते उसके वजह से भगवान के दांत उजले हुए, कोलगेट क्लोजअप ये सब लगा लगा के घिस घिस कर उसे साफ किया हो भगवान ने। भगवान के दांत इतने उजले कि जब माता यशोदा अपने गोद में, भगवान जब अब बच्चा थे छोटे से, तो माता यशोदा वो भगवान के दांत जब उग रहे थे तो दांतों को देखने से माता यशोदा सोच रही थी कि क्या ये कुछ दूध की बूंदे हैं इसके मुख के अंदर, जैसे दूध इतना उजला दिखता है भगवान के दांत इतने उजले हैं। तो भगवान के दांत उजले और भगवान के होंठ लाल, कई बार इस भौतिक संसार में उल्टा देखने को मिलता है, पान गुटखा खा खा कर दांत जो है लाल हो जाते हैं और सिगरेट पी पी कर होठ जो है वो सफेद और काले हो जाते हैं। गुटखा बहुत चलता है इस भौतिक संसार में, गुटखा। एक व्यक्ति हमें बता रहे थे कि ये जो शब्द है गुटका, इसमें से यदि ये वास्तविक रूप में क्या हो रहा है, यदि ट निकाल दिया जाए तो वो वास्तविक रूप में ये लोग खा रहे हैं उसके रूप में। तो भगवान यहां पर देखिए अपने लाल लाल होठों को उजले उजले दांतों से दबा रहे हैं, क्रोध की इस मुद्रा में है। तो हरिशौरी जी ये बहुत ही सुंदर तरीके से उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं कि यहां पर मानो ये प्रतीत हो रहा है कि रजोगुण पे सत्वगुण का प्रभाव, कि जो लाल रंग है वो रजोगुण का प्रतीक है। तो भगवान के होठ जो लाल है और उजले भगवान के दांत वो सत्वगुण का प्रतीक। तो अपने उजले सत्वगुणी दांतों से अपने लाल रजोगुणी होठों को भगवान दबा रहे हैं, ये दिखाते हुए कि यदि रजोगुण पर शासन करना है तो सत्वगुण होना चाहिए, केवल सत्वगुण ही रजोगुण पर शासन कर सकता है। ये भगवान अपने इस क्रोध की मुद्रा से दिखा रहे हैं कि अपने उजले दांतों से लाल होठों को दबाना। तो भगवान अब क्रोध की इस अवस्था में अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि व्यक्ति देखिए क्रोध जो है अलग अलग शरीर के अंगों के संपर्क में आता है, तो क्रोध अपने आप को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। जब क्रोध आंखों के संपर्क में आता है तो आंखें लाल हो जाती है, क्रोध जब अधरों के संपर्क में आता है तो ये धूझने लगते हैं, क्रोध जब जिह्वा के संपर्क में आता है तो क्या कहना, फिर तो गाली गलौज क्या क्या। इसलिए कहा गया है कि यदि क्रोध की तुलना अग्नि से की जाए तो क्रोध में निकले हुए वाक्य या वचन उस हवा के समान है जो अग्नि को फैलाते हैं। यदि किसी वन में अग्नि लगी है और यदि उस वन में अग्नि तो लग गई परंतु उसके साथ साथ तूफान चलने लगा तो वो तूफान उस अग्नि को पूरे वन को जला देगा, उस अग्नि को लेकर पूरे वन को वो तूफान जला देगा। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है, यदि कुछ कहे नहीं, चुप रहे, इसलिए जब दो व्यक्ति का झगड़ा शुरू होता है तो क्या कहते, अरे चुप रहो, कुछ बोलो मत, बको मत। और कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति जब क्रोध में आता है, जब उसे यह कहा जाता है कि चुप रहो और बकता है, अरे तुम चुप रहो। बचपन में हमें याद है कि जब घर में जब हमारे बड़े माता पिता जब थोड़ा क्रोधित हो जाते थे तो यदि हमारे भाई के ऊपर यदि क्रोधित हो गए तो हिम्मत किसी की नहीं कि बीच में कुछ कह दे कि भाई का साइड लेकर उसके डिफेंस में यदि मैं कुछ कह दूं तो यदि मैं कुछ कह दूं नहीं तो यदि मैं कुछ कहने जाऊं तो पहले दो पड़ेगी मुझे, बीच में तुम बोला तो पहले तुम्हें और उसके बाद में भाई को। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई स्थिति होती तो चुप रहना। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रोध जब जिह्वा के संपर्क में आता है तो कटु वचन निकलते हैं, जब क्रोध हाथों के संपर्क में आता है तो फिर क्या कहना, ये फिर हाथ पैर चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि शिशु, छोटा जो बच्चा, वो जब क्रोधित हो जाता है कि अरे माता ध्यान नहीं दे रही, कुछ खिलौना नहीं, कुछ पिलाना नहीं, तो शिशु जो है उसके केवल यही उपाय है क्रोध को दिखाने के, रोना शुरू करना, जिह्वा से हाथ पैर पटकना शुरू करना, और यदि उसे जो वस्तु चाहिए वो न मिले और कुछ वस्तु दे दें, उसे भूख लगी है और उसे खिलौना लाकर दे, पटक देता, उसे पकड़ेगा, ये नहीं चाहिए। तो जब क्रोध हाथों के और पैरों के संपर्क में आता है तो क्रोध इस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करता है। जैसे वैज्ञानिकों ने, इन्होंने एक टेस्ट किया कि एक अत्यंत क्रोधित व्यक्ति उसकी श्वास एक स्लाइड के ऊपर इकट्ठा की, उन्होंने जो श्वास से जो बूंदें निकलती हैं, थूक की बूंदें, उसे क्रोधित व्यक्ति की उसे इकट्ठा की और उसका टेस्टिंग किया कि इसके अंदर कितना विष उत्पन्न हुआ है, एक क्रोधित व्यक्ति की श्वास में कितना विष उत्पन्न होता है। तो पता लगा कि इतना विष एक क्रोधित व्यक्ति के श्वास में उत्पन्न होता है कि एक बड़े साइज का सुअर मर जाए उसे यदि दिया जाए तो, उसे गिनी पिग कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए ये वैज्ञानिक पता नहीं क्या क्या करने में लगे हैं, कहां इनकी खोपड़ी चलती है। देखिए कि कोई व्यक्ति क्रोध में है तो उसकी श्वास इकट्ठा करो और बेचारा कोई सुअर को दो, अभी उसने क्या गलती की, इसने क्रोध किया है तो उसको वो श्वास की जो बूंदे हैं वो उसे खिलाई और वो उसमें इतना विष था कि वो मर गया बेचारा। तो एक व्यक्ति एक प्रकार से, इसे अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन का अर्थ होता है विष, पॉइजन। तो व्यक्ति जब क्रोध में जाता है तो उसके अंदर से विष बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए दूर रहना चाहिए जो व्यक्ति क्रोधित होता है, तो पता नहीं उसके श्वास अंदर चले जाए तो क्या हो। और यहां पर भगवान अब क्रोध अवस्था में सबसे पहले अपने अधरों को उस क्रोध अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं, अधरों के द्वारा, दांतों के द्वारा। तो यहां वहां अब विकल होकर देख रहे हैं कि क्या करूं, इस क्रोध को कैसे मैं बाहर निकालूं। तो देखा कि बगल में एक लोढ़ा, लोढ़ा जानते हैं, शिलापुत्र नहीं, शिला होता है जिस पर चटनी पीसते हैं, आजकल तो सब मिक्सर विक्सर चलता है। पहले गांवों में महिलाएं जो हैं वो शिला को रखकर वो चटनी उसके ऊपर पीसा करती। देखा है कभी, सुना है, क्या कहते हैं, पाटा, वरवंटा, बराबर। तो उसे हिंदी में उसे कहते हैं शिला, और वो जो छोटा पत्थर होता है उसे कहते हैं शिला पुत्र, उस शिला का पुत्र। तो उस शिला का एक ही पुत्र है वो छोटा सा लोढ़ा या वरवंटा। तो भगवान जो भी शिला पुत्र, लोढ़ा या वरवंटा, उसे उठाए, उसे उठाए, और बड़ा मटका रखा हुआ था दही का, तो उसके पेंदी पर मारे। पेंदी नहीं समझते ना, पेंदी कहते हैं मटके का निचला भाग, जो निचला भाग होता है मटके का उसे कहते हैं पेंदी। क्या कहते हैं मराठी में, बुड़। तो नीचे पेंदी पर, बुड़ पर, वहां पर दे मारे, और नीचे पेंदी पर इसलिए मारे, भगवान सोच रहे थे कि यदि ऊपर मारूंगा तो ऊपर मटका खाली रहता है, तो ऊपर मारने से आवाज होगी। तो भगवान अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, छोटे से बालक हैं, बाल की बुद्धि देखिए भगवान की, कि नीचे मारूंगा तो नीचे घड़ा भरा हुआ है दही से, तो नीचे पेंदी पर या बुड़ पर मारूंगा तो आवाज कम होगी क्योंकि भरा हुआ है, ऊपर मारूंगा तो आवाज ज्यादा होगी, तो जैसे ही आवाज होगी तो भाग कर आ जाएगी, तो आगे की लीला कैसे होगी। तो टाइम चेता भगवान को कि यशोदा अपने टाइम से बाहर आए और देखे कि हम, मैंने क्या गुल खिलाया है बाहर यहां पर। तो इसलिए उस शिला पुत्र से, लोढ़े से नीचे पेंदी पर मारे, और बल 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 कर कर सारा दही बहने लगा, सब तरफ दही बहने लगा। और अब भगवान देखे, क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति क्रोध में रहता है तो ज्यादातर जो आसपास कुछ मिल जाए उसी को उपयोग में लेता है अपने क्रोध को रिलीज करने के लिए। जैसे मुझे याद है राजस्थान में हमारा जो गांव, वहां पर एक बार वो जो हमारी हवेली थी, बीच में हवेली के रेती का आंगन था, और वो रेती के आंगन में बहुत से बर्तन, खाए हुए जूठे बर्तन रखे हुए होते थे, क्योंकि रेती से ही वहां पर साफ करते हैं, रेती से ही सब कुछ साफ हो जाता है, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पानी तो बहुत कम रहता है वहां पर, तो इसलिए रेगिस्तान, वहां पर रेती रेती, तो रेती से ही सब बर्तन साफ हो जाया करते थे। तो मुझे याद है हवेली के बीच में वो रेती का आंगन, और वहां पर बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं उस रेती में खेल रहा था, तो हमारे दादाजी, वो अचानक कुछ हुआ पता नहीं, पानी गर्म मिला नहीं उन्हें स्नान करने के लिए, तो क्रोध में आ गए, तो क्रोध में आ गए, तो हमारी जो दादी हैं उनको क्रोध में कुछ तो बुलाने लगे, अरे क्या पानी कहां पर है ये वो, क्रोध में बहुत कुछ बोल रहे थे। तो मैं अचानक देखने लगा कि दादाजी अचानक क्रोध में आ गए, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया, तो अब कोई पास में नहीं, तो क्रोध उन्हें वहां पर व्यक्त करना था कि क्रोध को व्यक्त कैसे करें। तो पहले तो क्रोध जिह्वा से व्यक्त हो चुका, बोल दिया इतना सब कुछ, अब उन्होंने सोचा कि शारीरिक रूप से इस क्रोध को व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने देखा कुछ बर्तन पड़े, एक एक, एक गिलास पड़ा था, तो वो गिलास को रखा, उल्टा रखा गिलास को, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गिलास क्यों लिए हैं और उसके उल्टा क्यों रख रहे हैं, और प्रयोजन ऐसा था कि उनको गिलास उल्टा रखकर अब उसे लात मारनी। उस क्रोध को व्यक्त करना है, किसी को तो लात मारनी, तो गिलास को लात मारे। तो क्योंकि ठीक से दिख नहीं रहा था, मोटे मोटे चश्मे थे उनके, तो गिलास को रखा उल्टा और थोड़ा पीछे रनअप लिया। और ये सब कुछ मैं देख रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक गिलास को क्यों रखे हैं, पीछे दो स्टेप गए और फिर थोड़ा सा भागते हुए उसे लात मारने के लिए गए, परंतु मिस हो गया, वो लात बगल से चली गई गिलास की। तो फिर से गए पीछे, अभी लात लगी नहीं, हवा में ही लात चली गई, तो फिर से गए पीछे, फिर से ट्राई किया, फिर से लात नहीं लगी उसके ऊपर। तो देखा कि कोई बैठा हुआ, अरे कौन है इधर बैठा? मैं, दादाजी मैं। अरे किधर है ग्लास, कहां पर है? तो अब मैं वहां पर अंपायर बनकर डायरेक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा थोड़ा आपके दाएं तरफ, हाँ अब शुरू कीजिए, हाँ वन टू, हाँ बताइए कहां, वो पूछ रहे हैं किधर है, दाएं की बाएं? हाँ दाएं, हाँ। तो थोड़ा वो भागना शुरू किए, दाएं, हाँ मारिए जोर से, हाँ जोर से मारा, वो उड़ते हुए ग्लास गया। अब क्रोध शांत हुआ। तब मुझे पता लगा कि ये क्रोध को व्यक्त करने के लिए वो गिलास को। तो इसी प्रकार से भगवान, जो भी कुछ मिला, लोढ़ा मिला, वरवंटा मिला, जो भी मिला मारा उसे, और वो दही के मटके को फोड़ा और दही पूरा वहां पर बहने लगा। और अब भगवान समझ गए कि अब ये दही पूरा यहां पर फैल चुका है, अब यहां से 9, 2, 11 ये बस पकड़नी है, 9, 2, 11 होना है यहां से। तो भगवान अब देखे पूरा दही फैल गया, तो दही को कैसे लांग कर जाएं, छोटे से भगवान, छोटे छोटे उनके पग, और दही फैल गया तो दही को लांग कर कैसे जाएं। तो पहले प्रयास किया लांगने का, एक पैर यहां पर, एक पैर थोड़ा ऊपर रखते हुए, तो यहां पर भक्त भगवान की इस छवि को देखते हुए कहते हैं कि यही वामन देव हैं, यही वामन देव जिन्होंने अपने छोटे से दो पगों में पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को नाप दिए थे ये, और यहां पर छोटे से दही की चौड़ाई को नहीं लांग पा रहे। ये आपकी अद्भुत लीला, ये आपका अद्भुत पराक्रम, कि आप के वही चरण, और वो चरण कौन से? भगवान के अंशों के अंशों के अवतार वामन देव, जो कि त्रिविक्रम बने, और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दही की चौड़ाई को नहीं लांग पा रहे। तो फिर दही के ऊपर पच 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 कर कर चलना शुरू किए, और भगवान भी यही सोच रहे थे कि मैं यदि दही के ऊपर चल कर जाऊंगा तो मेरे माखन या दही से सने हुए चरण चिन्ह देखकर माता यशोदा ढूंढ लेगी कि मैं कहां पर अब क्या करने जाने वाला हूं। क्योंकि वो चाहते थे कि माता यशोदा आए और उन्हें क्रोध मिले, पता लगे कि मुझे छोड़ने का क्या परिणाम होता है। तो भगवान बता रहे थे कि यदि जो व्यक्ति मुझे छोड़ दे तो क्या परिणाम होता है, इसलिए हमें छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान को पकड़ के रखना चाहिए। तो यहां पर भगवान अब अपने छोटे छोटे से बालकीय चरण दही के ऊपर रख रख कर जा रहे हैं, और जाकर भगवान क्या किए, सबसे पहले भगवान बाहर के जो आंगन के सारे वानर थे, सारे वानरों को इकट्ठा किया, सारे वानरों को इकट्ठा किया, और भगवान उखल लिए। उखल देखे हैं, उखल क्या होता है, उखल को क्या कहते हैं, उखल, उखल जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, तो उस उखल को लिए, उल्टा रखे उस उखल को, उसके ऊपर चढ़े और माखन ऊपर जो छींके पे लगाया हुआ था उस माखन को निकालने लगे, और सबसे पहले इन वानरों को खिलाने लगे माखन, इन वानरों को माखन खिलाने लगे। और भगवान ये वानरों को बहुत ही विशेष तरीके से माखन खिला रहे थे। और भगवान वानरों को माखन क्यों खिला रहे थे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, परंतु आज की कथा हम यहां पर विराम देते हैं, क्योंकि कल की कथा में भगवान को वानरों को खिलाने के पीछे बहुत गहरा तात्पर्य था, बहुत से कारण थे वानरों को भगवान माखन खिला रहे हैं। इसलिए यदि अभी शुरू करेंगे तो कल तक बैठना पड़ेगा आपको यहां पर, तो इसलिए उसकी चर्चा हम कल करेंगे। परंतु यहां तक भगवान अब लीला को पहुंचाए हैं कि भगवान ने अपना यह ऐश्वर्य त्याग दिया त्रिगुणातीत होने का, और भगवान क्रोध दर्शा रहे हैं अपने अधरों को दबाकर, वो मटके को फोड़कर, चारों तरफ दही फैलाकर और माखन को चोरी करकर। और माता यशोदा अब रसोई घर से बाहर आती है और देखती है मटका फूटा है, दही चारों तरफ बिखरा है और कृष्ण गायब। कौन महाशय और है इस पूरे वृंदावन में जो ऐसे काम करता है? यही एकमात्र मेरा ही ये सपूत, मेरा ही सपूत है जो ये काम कर सकता है। तो माता यशोदा अब वो अपनी पहली उंगली अपने ठोड़ी पर लगाते हुए वो हंसने लगी। माता यशोदा हंस इसलिए रही थी कि वो सोच रही थी कि देखो बुद्धि इस बालक की, कि इसने इतने बड़े मटके को फोड़ा परंतु आवाज बिल्कुल नहीं हुई। तो माता यशोदा अब सोच रही, डिटेक्टिव का काम कर देख रही है कि कहां पर इसने मटके को मारा। तो भगवान भी देखो माता यशोदा जैसे के पुत्र हैं तो वो भी अपनी बुद्धि लगाए नीचे ही मारे, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। तो माता यशोदा भी वही सोच रही कि नीचे मारा इसने लोढ़ा से और बिल्कुल आवाज नहीं हुई, जानता है कि ऊपर मारेगा तो आवाज होगी, मैं तुरंत बाहर आकर देखूंगी क्या आवाज हुई, और गायब, यहां से गायब हो गया। तो बुद्धि इतनी हो गई विकसित इस बालक की, तो वास्तविक रूप में ये व्यक्ति जो है, ये बालक जो है प्रगति के पथ पे। तो माता यशोदा को मटके फूटने का कोई गम नहीं, कोई रंज नहीं कि मटका फूट गया, दही बिखर गया। और माता यशोदा अब सोचने लगी कि अब ये गया कहां होगा। तो पहले सोचने लगी कि बाहर आंगन में गया होगा या फिर से अपने कमरे में गया होगा, तब तुरंत देखा कि माखन या दही से सने हुए भगवान के चरण चिन्ह। तो अब भगवान के चरण चिन्हों को देख देख कर, वो दही रूपी चरण चिन्ह भगवान के देखकर माता यशोदा ढूंढने जा रही है कि कहां पर है ये उच्छृंखल, कहां पर है ये नटखट। तो माता यशोदा वहां तक पहुंचती है और माता यशोदा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को क्या करते देखती है, और भगवान श्री कृष्ण मरकटों को, वानरों को, जो हयंगवम जो दही या माखन खिला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। कल करेंगे, और कल का कार्यक्रम होगा सौजन्य बंगलो, और बहुत ही विशेष कल की कथा होगी जहां पर भगवान अब अपने आगे के कुछ ऐश्वर्यों का परित्याग कर रहे हैं। तो यदि आपको जानना है कि भगवान वानरों को माखन क्यों बांट रहे थे, माता यशोदा ने अब भगवान को माखन वानरों को बांटते हुए देख क्या किया, यदि ये सब का आंखों देखा हाल आपको जानना है सुखदेव गोस्वामी द्वारा, तो कल ठीक 7:30 बजे आप लोग पहुंच जाइए सौजन्य मंगलो, वहां पर ठीक 7:30 बजे हम प्रारंभ करेंगे भगवान की आगे की इस दामोदर लीला से। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की, शिल प्रभुपाद की, आप सबकी। निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा।